नमस्कार स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शक्ति के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। शक्ति, आज किन खबरों के साथ अपने इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रखे हैं?
नवीन, आज डाली जाएगी नजर सबसे पहले क्रिकेट के मैदान पर, जहां कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है और श्रीलंका पे फॉलो ऑन का खतरा बना हुआ है।
शक्ति, वहीं ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी से 210 रन से हरा दिया है। वहीं त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की स्टार भारतीय जोड़ी बैडमिंटन की विश्व रैंकिंग में 27वें स्थान पर पहुंच चुकी है।
और नवीन, अगर चेस की बात कर ली जाए तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं।
तो आज के इस अंक में इन चारों खबरों पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा खेल जगत की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी हम आपको बताते चलेंगे। शक्ति, कोलंबो में भारत की स्थिति जो है अब आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। श्रीलंका ने तीसरे दिन का आज खेल समाप्त होने पर पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। दिन के खेल के समापन के समय दिनुषा 85 और लाहिरी कुमारा 8 रन बनाकर क्रीज पर थे।
वहीं पर नवीन, श्रीलंका को अभी भी फॉलो ऑन टालने के लिए 39 रन की दरकार है। हालांकि आज के खेल में सबसे बड़ी चीज उनके लिए यही रही कि पसिंदु सूर्या बंदारा ने 80 रन की शानदार पारी खेली और काफी हद तक पारी को आगे बढ़ाया। भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इस तरह से श्रीलंका अभी भी भारत से 238 रन पीछे है। आइए पहले सुनते हैं आज के दिन के खेल पर ये रिपोर्ट।
भारतीय गेंदबाज सोनल दिनुषा की अगुवाई में श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाजों के संघर्ष को खत्म करने में नाकाम रहे। इससे बारिश और खराब रोशनी के कारण आज तीसरे दिन का खेल जल्दी समाप्त होने तक मेजबान श्रीलंका ने 8 विकेट खोकर 265 रन स्कोर बोर्ड पर लगा लिए थे। श्रीलंका ने आज 2 विकेट पर 8 रन से आगे खेलना शुरू किया और पहले सत्र में 122 रन जोड़े। बारिश के कारण देर से शुरू हुए दूसरे सत्र में मेजबान टीम ने 3 विकेट गंवाते हुए 86 रन और जोड़े। चायकाल तक 7 विकेट पर 216 रन के स्कोर से आगे खेलते हुए श्रीलंका के जल्दी सिमटने के आसार दिख रहे थे। दिनुषा ने हालांकि लगातार तीसरी पारी में 50 से अधिक रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। उन्होंने केशारा नुवांता के साथ 8वें विकेट के लिए 57 रन जोड़े और लाहिरू कुमारा के साथ 9वें विकेट के लिए अब तक 35 रन की अटूट साझेदारी की। दिनुषा दिन का खेल समाप्त होने तक 85 रन बनाकर नाबाद थे। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 विकेट, जबकि रविन्द्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
शक्ति, इस मैच में एक बार फिर हम सबकी उम्मीदें जो थी वो मानव सुथार पट्टी की हुई थी, लेकिन इस बार वो कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि 21 ओवर उन्होंने फेंके हैं जिसमें उन्होंने 83 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 3 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन जहां एक तरफ ऐसा लग रहा था कि जब शुरू के 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे श्रीलंका के, तो लग रहा था कि शायद भारतीय टीम जो है इन्हें और जल्दी समेट लेगी। लेकिन पसिंदु सूर्या बनांद्रा, उन्होंने 80 रन का जो योगदान दिया और साथ में इस समय जो बैटिंग कर रहे हैं दिनुषा 85 रन पर, उन्होंने भी बेहतर योगदान देते हुए श्रीलंका को एक अच्छी स्थिति में, अगर उनके हिसाब से कहें एक बेहतर स्थिति में ला दिया। और भारत के हिसाब से कहें तो शायद वो उन्हें हमें फॉरवर्ड की दरकार की तरफ ले चलेंगे।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा नवीन, क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी ने एक वक्त पे अपना अटैक कायम किया था, कह सकते हैं कि श्रीलंका के बल्लेबाजों से अधिक इस गेंदबाजी को किसी ने परेशान किया है तो वो है इस मैदान में बारिश ने, जिसने लगातार खलल डाला और उस रिदम को तोड़ने का काम किया है। आपने मानव सुधार का जिक्र किया, अपना तीसरा मैच ये खिलाड़ी खेल रहा है, आज 5वीं पारी और 20 विकेट ले चुका है, तो कह सकते हैं मोमेंटम में है। उम्मीद है कल भारतीय गेंदबाजों की मनोस्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी, जल्दी से जल्दी टीम को ऑल आउट किया जाए और फॉलो ऑन देकर के आगे भारत किस तरह से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाता है मैच को।
शक्ति, भारतीय गेंदबाजी पर अगर हम एक नजर डालें तो एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद जो भारतीय स्पिनर हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विकेट्स आप देखेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी 3 विकेट मिले और मानव सुथार को भी 3 ही विकेट हासिल हुए हैं। इसका सीधा सीधा असर यह है कि कल कोई भी गेंदबाज अच्छा फायदा उठा सकता है, क्योंकि आज बारिश रही है जिसमें लगातार खेल में रुकावट पैदा की है और कल सुबह जब खेल आरंभ होगा तो कोशिश रही रहेगी कि जल्दी से जल्दी श्रीलंका को पवेलियन भेजा जाए।
जी बिल्कुल, इसी पे नजर होगी और किस तरीके से इस मुकाबले के साथ साथ एक अच्छी शुरुआत टेस्ट में हो अफगानिस्तान के बाद एक और क्लीन स्वीप की तरफ भारत बढ़ता हुआ नजर आए।
कल उम्मीद है कि पंत को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि आज तीसरे दिन उन्होंने विकेट कीपर नहीं की और उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने ये जिम्मेदारी संभाली थी, क्योंकि उनके कंधे पर जो है वो चोट लगी हुई थी। और उम्मीद करते हैं कि कल जब खेल आरंभ होगा और जब तक खेल प्रेमी अपने टीवी को ऑन करेंगे या क्रिकेट कमेंट्री सुनेंगे, तब तक जो है पवेलियन में जा चुकी होगी श्रीलंकाई टीम। और उम्मीद है कि भारत इस टेस्ट मैच को कल ही समाप्त करने की कोशिश करेगा। वही बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी की। ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। बेंगलुरु में क्वार्टर फाइनल में शाहबाज अहमद के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ पारी और 210 रन से जीत हासिल की है। सेमीफाइनल में अब ईस्ट जोन का मुकाबला सेंट्रल जोन से होगा। ये मैच 30 अगस्त को खेला जाएगा और शक्ति ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और उम्मीद की जाती है कि इस टूर्नामेंट के बाद ही जो है कई खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट टीम में, खासकर क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में आने का अवसर मिलता है। और अगर हम बात करें, अगर आईपीएल को इससे कंपेयर करें, तो आज भी मुझे लगता है कि अगर मानव सुथार जैसे खिलाड़ी बिना आईपीएल में शिरकत किए हुए या बिना आईपीएल में अपना जलवा दिखाए हुए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो सकते हैं, तो ऐसी दिलीप ट्रॉफी जैसे जो हमारे घरेलू टूर्नामेंट है उसमें से भी कई खिलाड़ी निकलकर हमारी टीम में आ सकते हैं।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। आईपीएल एक तरफ जहां पे ग्लैमर से भरपूर टी20 का रोमांच है, दूसरी तरफ रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, आपने मानव सुथार का जिक्र किया, अभी इसके पहले रणजी ट्रॉफी संपन्न हुई, आकिब नवी एक स्टार के रूप में उभरे और पूरा देश पूछ रहा था। तो आप ये अनुमान लगाइए कि आईपीएल में भी खिलाड़ियों को जो चुना जा रहा है उसके लिए एक पैमाना दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी बनते हुए नजर आ रही है।
जी, और घरेलू क्रिकेट से अगर आप खिलाड़ी चुनकर लेकर आते हैं तो लगता है कि हमारे पास अभी वो खिलाड़ी बचे हुए हैं जो एक क्लासिक क्रिकेट खेलते हैं, ना कि सिर्फ आईपीएल का सिर्फ गेंद और जिसमें सिर्फ बॉलर बॉल ही डाल रहा है और लगातार सिर्फ उसे बाउंड्री का तरफ ही अपना रुख करना पड़ता है, क्योंकि हर गेंद जो है दर्शक भी चाहते हैं कि हर गेंद बाउंड्री के पार हो। लेकिन अगर आपको क्लासिक खेल देखना है तो आपको घरेलू क्रिकेट को थोड़ा और बढ़ावा देना पड़ेगा। नजर कर लेते हैं उधर दूसरे मैच में, दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुशीर खान और ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार अर्धशतक की बदौलत वेस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में मजबूत स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन नॉर्थ जोन ने लगातार विकेट चटकाकर तीसरे दिन के मुकाबले में वापस कर लिया है अपने आप को।
जी बिल्कुल, और जीत के लिए 287 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पश्चिम क्षेत्र की टीम एक समय अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 195 रन पर थी नवीन, और आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 70 गेंदों पर 66 रन की एक पारी खेली, लेकिन वो आउट हुए और वेस्ट जोन अभी भी जीत से 67 रन दूर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि महज 3 विकेट हाथ में है।
जी, क्रिकेट प्रेमियों के लिए कल का दिन बेहद रोमांच से भरपूर रहेगा, आपकी नजर दिलीप ट्रॉफी पर भी रहेगी और कोलंबो में तो हम आपको एक ऐसा मैच देखने की हम लोग कोशिश करेंगे जहां भारत जो है जीत की ओर अग्रसर होगा। क्रिकेट के मैदान के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं बैडमिंटन स्टेडियम की ओर, जहां BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की स्टार भारतीय जोड़ी BWF की ताजा रैंकिंग में 12 पायदान ऊपर पहुंचकर गई है और ये स्टार महिला डबल्स के 39वें स्थान पर था और अब 27वें स्थान पर आ गया। बेहतर खेल का प्रदर्शन किया त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। अगर हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के बाद अगर हम किसी जोड़ी को देखते हैं शक्ति, तो यही एक जोड़ी नजर आती है और इससे उम्मीदें भी करी जा रही हैं कि भविष्य में ये जोड़ी और बेहतर खेल दिखाएगी और रैंकिंग के साथ साथ अगली बार हमारे को एक पदक और ऊपर मिलने की कोशिश।
जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि पदक का रंग और बेहतर चमक बिखेरता हुआ नजर आएगा और भारतीय बैडमिंटन में किसी नए ध्रुव तारे की तरह ये जोड़ी चमकते हुए नजर आ रही है। नवीन, एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, आज 25 अगस्त का दिन है और आज ही के दिन आज से 7 साल पहले पीवी सिंधु ने पहली बार BWF विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता था, तो एक महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन एक महत्वपूर्ण और उपलब्धि इस महिला डबल्स जोड़ी ने जोड़ी है।
अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा के बाद शक्ति ऐसा लगता था कि शायद महिला डबल्स में कोई भारतीय जो, हालांकि भारतीय जोड़ी पनप भी नहीं पा रही थी, बहुत बेहतर खेल का प्रदर्शन नहीं कर रखे थे, लेकिन जिस तरह से इस जोड़ी ने उम्मीदें जताई हैं, मेडल की उम्मीदें जताई हैं और लगातार जिस तरह से इन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है, उससे लगता है कि भारतीय जोड़ी भविष्य के अंदर एक अच्छे सितारे के रूप में चमकेगी।
और अब बात की जाए शतरंज की, जहां भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया।
प्रज्ञानानंदा ने क्लासिकल और रैपिड गेम के बाद ही फाइनल में जगह पक्की कर ली थी, और इसके बाद खेले गए 3 ब्लिट्स गेम हारने के बावजूद उनके कुल स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा। और आज खिताबी मुकाबले में प्रज्ञानानंदा का सामना मौजूदा चैंपियन अमेरिका के फैबियानो कारुआना से होगा। और अब बात खेलो इंडिया स्कीम की। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन राव ने कहा है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में खेल को शामिल करना कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हमारी व्यवस्था का हिस्सा रहा है। श्री राव ने संवाददाताओं से कहा कि हम पाठ्यक्रमों में खेल को वापस लाने का काम कर रखे हैं।
Integration of sports in schooling curriculum is not something new to our nation. Gradually, I think we have moved on and there has been some shift in the alignment and priorities. I will not be able to give a timeline, but I would like to get it done as early as possible. Simply because if every child in the school is able to go to the playground and play, I think that will help the country in a very transformative manner to become a good sporting nation.
इस अवसर पर श्री राव ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया की नई स्कीम के माध्यम से हम कई स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और जिलों के स्तर पर ज्यादा प्रतियोगिताएं और लीग शुरू करना अधिक बच्चों और खिलाड़ियों के लिए स्पोर्टिंग इकोसिस्टम से जोड़ने का काम करेगा।
In the new scheme of Khelo India, revamped scheme, we are now working on multiple layers. So one is to introduce more competitions and leagues at the level of schools, districts, universities, colleges, which will actually engage more number of children and athletes in sporting ecosystem, as well as they will get more opportunity to continue to play. Secondly, we are also thinking in terms of having Khelo India Utkrisht Vidyalay. These will be already existing schools, but they would have a very heavy focus on good quality sporting training program, and we'll have Khelo India feeder schools. Feeder schools will be able to feed talented athletes and budding students into the sporting ecosystem.
और अब आपको लिए चलते हैं टेनिस के मैदान की ओर। न्यूयॉर्क में सीजन के आखिरी टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज क्वालिफायर मुकाबलों के साथ हो चुका है, जहां कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी मेन ड्रॉ में पहुंचने के लिए क्वालिफाइंग राउंड पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और शक्ति, हम अपने सुनने वालों को बता दें कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। यूएस ओपन आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है, जो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच में खेला जाता है और ये हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट होता है।
जी बिल्कुल, और जितना खास ये टूर्नामेंट है उतनी ही खास इसकी इनामी राशि होती है। सभी इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कुल 108 मिलियन अमरीकी डॉलर की इनामी राशि रखी गई है नवीन, जिसमें पुरुष और महिला सिंगल्स चैंपियन को 5.5 मिलियन डॉलर मिलेंगे। तो आज जानते हैं कि टेनिस की दुनिया के इस रोमांचक टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में इस बार कैसी टक्कर देखने को मिलेगी।
ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर ने किसी बड़े टूर्नामेंट में एक साथ हिस्सा नहीं लिया है। मौजूदा चैंपियन अल्कराज ने यूएस ओपन में वापसी की पुष्टि की है, जबकि दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर टूर्नामेंट से हट गए हैं। 2008 में रोजर फेडरर के बाद से किसी भी पुरुष खिलाड़ी ने सिंगल्स का खिताब सफलतापूर्वक डिफेंड नहीं किया है। 23 वर्षीय कार्लोस अल्कराज जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। अब नंबर 1 सीड अलेक्जेंडर ज्वरेव होंगे, जो पिछले 2 ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं और फ्रेंच ओपन में जीत हासिल कर चुके हैं। ओलंपिक चैंपियन नोवाक जोकोविच भी इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। राफेल जोडर और लर्नर टियन जैसे युवा खिलाड़ी अगर टूर्नामेंट में आगे तक जाते हैं तो टॉप 10 में जगह बना सकते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन के रनर अप फ्लेवियो कोबोली भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन।
नवीन, 30 तारीख से इस महीने की मेन ड्रॉ शुरू हो जाएंगे, कितनी उम्मीदें इन खास खिलाड़ियों से होंगी? स्टार हमेशा फेवरेट होते हैं।
उम्मीद करते हैं कि हम अपने तमाम उन खिलाड़ियों को जो हमारे फेवरेट हैं, अल्कराज को हम खेलता हुआ देख पाएंगे और ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और विंबल्ड, क्योंकि ये एक आखिरी लास्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, तो हर कोई खिलाड़ी इसको जीत के साथ इसको अपने इस सीजन के एंड को इसको करने की कोशिश करेगा। और अपने सुनने वालों को हम एक बार फिर बता दें कि विंबलडन 1877 में शुरुआत हुई थी और यूएस ओपन जो था 1881 में, एक क्रोनोलॉजी है शक्ति, फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था। 30 अगस्त से इस इस प्रोग्राम की या कहने की इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी और हमारी नज़र उस पर लगातार रहेगी। स्पोर्ट्स स्कैन में हम लगातार आपको ताज़ा तरीन जानकारी देते रहेंगे। बहरहाल अब वक्त हमें बिल्कुल इशारा नहीं कर रहा है कि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत हो चुकी है। श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है।
जी बिल्कुल, और ईस्ट जोन की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है दिलीप ट्रॉफी के। नॉर्थ ईस्ट जोन पर पारी और 210 रन की जीत बनाते हुए।
आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन और शक्ति को जी इजाजत। नमस्कार।